अध्याय 19 गढ़वाल वंश। गढ़वाल कौन थे? चार गढ़वाल अभिलेखों में यह नाम मिलता है, परंतु वे अथवा अन्य ऐतिहासिक साक्ष्य गढ़वाल शब्द की व्युत्पत्ति पर कोई प्रकाश नहीं डालते। कुछ विद्वानों का मत है कि यह शब्द ग्रहवार से बना है। ग्रहवार का अर्थ है ग्रह का विजेता। ययाति के पुत्र देवदास ने शनि ग्रह पर विजय प्राप्त की थी, अतः उन्हें ग्रहवार कहा गया। प्रारंभ में यह वंश कलचुरी वंश के अधीन था। यशो विग्रह चंद्रावती अभिलेख से प्रकट होता है कि इस वंश का सर्वप्रथम राजा यशो विग्रह था। इसने कुछ युद्धों में विजय प्राप्त की, परंतु फिर भी यह एकमात्र सामंत शासक ही था, क्योंकि इसके नाम के साथ कोई भी राजोचित विरुद्ध नहीं मिलता। महीचंद्र यशो विग्रह के पश्चात उसका पुत्र महीपाल राजा हुआ। उसके नाम महीतल और महियल भी मिलते हैं। रहन दान पत्र भी का कथन है कि इसने अनेक शत्रुओं को परास्त किया था। चंद्रावती अभिलेख का कथन है कि उसकी कीर्ति समुद्र पार चली गई थी, परंतु उसकी लघु उपाधि से अनुमान किया जा सकता है कि यह एकमात्र सामंत शासक ही था। चंद्रदेव यह महीचंद्र का पुत्र था, इसे चंद्रादित्य कहते हैं। प्रतिहार वंश का पतन तो पहले ही हो चुका था। इस समय कलचुरी वंश भी पतनोन्मुख था। भासी अभिलेख से प्रकट होता है कि भोज और कर्ण कलचुरी नरेश के पश्चात पृथ्वी पर अत्याचार होने लगे। चंद्रदेव ने इन अत्याचारों से पृथ्वी की रक्षा की। संभव है कि इन अत्याचारों का कारण मुसलमानों के आक्रमण हो। हबीब असीयर से प्रकट होता है कि गजनी के सुल्तान इब्राहिम ने भारत पर अनेक बार आक्रमण किए थे। चंद्रदेव ने अपने वंश की स्वतंत्रता घोषित करते हुए कलचुरी यशाकर्ण से उत्तर प्रदेश का बड़ा भाग छीन लिया। चंद्रावती अभिलेख से प्रकट होता है कि उसने काशी, कानिकुब्ज, उत्तर कौशल और दिल्ली प्रदेश पर अधिकार कर लिया था। इस प्रकार उसका राज्य काशी से लेकर दिल्ली तक विस्तृत हो गया। कानिकुब्ज के ऐतिहासिक नगर पर अधिकार ने उसे और उसके वंश को अपूर्व प्रतिष्ठा प्रदान की। मुस्लिम लेखकों का कथन है कि महमूद ने कानिकुब्ज पर अधिकार कर लिया था और उसने वहाँ चांदराय को अपने अस्तबल का अधिकारी बनाया था। जब महमूद चला गया तो चांदराय ने कानिकुब्ज पर अधिकार कर लिया। डॉक्टर गांगुली चांदराय का समीकरण चंद्रदेव के साथ करते हैं। एटसीरे और रोमन योगी इस कथन पर विश्वास नहीं करते कि इस समय से गढ़वालों की राजधानी कानिकुब्ज बन गई। इनके तर्क निम्नलिखित हैं। पहला, मुसलमान लेखक गढ़वालों को काशी नरेश कहते हैं। दूसरा, गढ़वालों के अधिकांश अभिलेख काशी से प्राप्त हुए हैं। तीसरा, चंदेल अभिलेख भी गढ़वालों को काशी नरेश कहते हैं। चौथा, चंद्रराय के समय कानिकुब्ज पर राष्ट्रकूट नरेशों गोपाल और मदनपाल का अधिकार था। कानिकुब्ज अपने महत्व के कारण ही गढ़वालों की राजधानी कहलाता था। उनकी वास्तविक राजधानी वाराणसी थी। जो भी हो, इतना निश्चित है कि कानिकुब्ज उसके अधिकार में था। अभिलेखों में उसके लिए निज भुजों पराजित प्री कानिकुब्जाधिपत्यम का प्रयोग मिलता है। चंद्रराय और चंद्रदेव का समीकरण भी संदेहपूर्ण है, क्योंकि मुसलमान लेखक चंद्रराय के पिता को एक साधारण व्यक्ति बताते हैं, जबकि चंद्रदेव का पिता नृप था। चंद्रदेव ने अनेक राजाओं को पराजित किया, जैसा कि उसके लिए अभिलेखों में प्रयुक्त कांत द्विसन मंडल विरुद्ध से प्रकट होता है। अभिलेखों में चंद्रदेव की प्रथम तिथि 1148 विक्रम संवत और अंतिम तिथि 1156 विक्रम संवत है। इनसे प्रकट होता है कि उसने 1090 ईस्वी से 1103 ईस्वी तक राज्य किया। मदनपाल यह चंद्रदेव का पुत्र और उत्तराधिकारी था। इस कालखंड में मुसलमान पंजाब से आगे बढ़कर संपूर्ण उत्तरी भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। मदनपाल के समय गजनी के सुल्तान मशूद तृतीय का भारत पर आक्रमण हुआ। इसके निम्नलिखित साक्ष्य मिलते हैं। पहला, मिन्हाज उस सिराज का कथन है कि इस राजा के शासनकाल में हाजिब महान की मृत्यु हो गई, परंतु हाजिब तुगतिगीन ने गंगा नदी पार की और हिंदुस्तान पर आक्रमण किया। वह विजय करता हुआ इतनी दूर तक पहुंच गया जितनी दूर तक सुल्तान महमूद के पश्चात भी सेना नहीं पहुंची थी। दूसरा, मशूद तृतीय के राजकवि मशूद इब्न शाद इब्न सालमन का कथन है कि मशूद ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया और मलही को बंदी बना लिया। कन्नौज हिंदुस्तान की राजधानी थी। वहाँ संपूर्ण देश की धनराशि उसी प्रकार आती थी जिस प्रकार समस्त नदियाँ समुद्र में गिरती हैं। डीसी गांगुली, रमाशंकर त्रिपाठी और रोमन योगी के मतानुसार मलही गढ़वाल नरेश मदनपाल था। यह मशहूर द्वारा पराजित हुआ और बंदी बना लिया गया था, परंतु बात को इस आक्रमणकारी को धन देकर पुनः स्वतंत्रता प्राप्त की। परंतु एच सी रे और मोती चंद्र के मतानुसार मलही कन्नौज का स्थानीय शासक राष्ट्रकूट मदनपाल था, परंतु रहान अभिलेख से पता चलता है कि शीघ्र ही मदनपाल के पुत्र महाराज पुत्र गोविंद चंद्र ने हम्बीर को पराजित करके अपने पिता के पराजय का बदला लिया। गोविंद चंद्र को महारानी कुमार देवी ने के सारनाथ अभिलेख का कथन है कि गोविंद चंद्र हरि के अवतार थे और तुरिष्कों से वाराणसी की रक्षा के लिए स्वयं हर ने उसे नियुक्त किया था। इस अनुमान किया जा सकता है कि जिस समय मुस्लिम आक्रमणकारी कन्नौज की विजय करके वाराणसी की ओर बढ़े, उस समय युवराज गोविंद चंद ने उन्हें पराजित किया। पालों की पराजय। इस समय पालवंश का राजा रामपाल था। निम्नलिखित साक्ष्यों से प्रकट होता है कि इसे यवराज गोविंद चंद्र ने पराजित किया था। पहला, लक्ष्मीघर के कीर्तिकल्प तरु का कथन है कि गोविंद चंद्र ने खेरही में गोंडों की हाथियों की सेना को भयभीत कर दिया। दूसरा, रहान अभिलेख से इस कथन की पुष्टि होती है। इसमें भी यही कहा गया है कि गोविंद चंद्र ने गोंडों की हाथियों की सेना को नष्ट कर दिया था। इस प्रकार मदन चंद्र अपने समय का एक प्रताप राजा सिद्ध हुआ। इसे अपने शासन काल में अपने पुत्र गोविंद चंद्र से बड़ी सहायता मिली। गोविंद चंद्र अपने पिता की मृत्यु के पश्चात गोविंद चंद्र राजा हुआ। इसने अनेक समकालीन राजवंशों को पराजित करके उत्तरी भारत में गाढ़वालों को सर्वशक्तिशाली राजवंश बना दिया। कलचुरी वंश की पराजय। गाढ़वालों में सर्वप्रथम गोविंद चंद्र ने अश्वपति, गजपति, नरपति, राजत्रयाधिपति की उपाधि धारण की। यह उपाधि कलचुरियों की थी। प्रोफेसर मीरासी के मतानुसार उपाधि से यह प्रकट होता है कि कलचुरियों ने प्रतिहारों, कलिंग के गगों और बंगाल के पालों को पराजित किया था, क्योंकि प्रतिहार अपनी अश्वसेना के लिए और कलिंग अपनी गजसेना के लिए प्रसिद्ध थे। पूर्वी भारत के नरेशों की उपाधि नरपति होती थी। अब इसी उपाधि को गोविंद चंद ने धारण किया। इससे अनुमान किया जा सकता है कि उसने कलचुरी वंश को परास्त किया था। इस अनुमान की पुष्टि एक अन्य साक्ष्य से भी होती है। कलचुरी नरेश यशकर्ण ने अंतराल पत्तला में 2 ग्राम दान में दिए थे। 1122 में गोविंद चंद ने इन्हीं ग्रामों को पुनः दान किया। पालों से युद्ध। संभवतः गोविंद चंद्र ने पालों को पराजित करके उनके मगध प्रदेश के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया। उसका एक अभिलेख मानेर में मिला है। लार अभिलेख से पता चलता है कि उसने मुद्दगिरी में एक दान किया था। पराजित पाल नरेश मदन पाल था, परंतु तदुपरांत मगध में पुनः मदन पाल के अभिलेख मिलते हैं। इनसे स्पष्ट हो जाता है कि मदन पाल ने कुछ ही समय पश्चात पुनः संपूर्ण मगध पर अधिकार कर लिया। यह भी संभव है कि गोविंद चंद ने पालों से मित्रता कर ली हो, क्योंकि उसकी पत्नी कुमार देवी पाल वंश की राजकुमारी थी। चंदेलों से युद्ध। इसी प्रकार गोविंद चंद ने चंदेल वंश से भी युद्ध किया। चंदेल वंश का समकालीन राजा जयवर्मा था। कानपुर के समीप छत्तरपुर चंदेलों के अधीन था, परंतु 1120 के छत्तरपुर अभिलेख से प्रकट होता है कि गोविंद चंद ने इस पर अधिकार कर लिया था। 1147 के छत्तरपुर के दूसरे अभिलेख से सिद्ध होता है कि इस पर चंदेलों ने पुनः अधिकार कर लिया था। दर्शाण पर अधिकार। पूर्वी मालवा को दर्शाण कहते हैं। इस प्रकार इस समय परमार नरेश यशोवर्मन का राज्य था। रंभामंजरी नाटक का कथन है कि गोविंद चंद ने दर्शाण यशोवर्मन से छीन लिया था। विजय दिवस पर ही गोविंद चंद के पुत्र उत्पन्न हुआ, अतः उसका नाम जयचंद रखा गया। परंतु दर्शाण पर विजय करने के लिए गोविंद चंद को चंदेल राज्य से होकर जाना पड़ा होगा। संभव है कि प्रारंभिक युद्ध के पश्चात गोविंद चंद ने चंदेलों से मित्रता कर ली हो और चंदेलों ने दर्शाण विजय में उसकी सहायता की हो। चोल वंश से मित्रता। डॉक्टर एच सी रे का मत है कि गोविंद चंद्र चोलों का मित्र था। इस मत का आधार गंगे कोड चोलपुरम का एक अभिलेख है। इसमें यशोविग्रह महीचंद्र और चंद्रदेव नामक गाढ़वालों के नाम है। डॉक्टर रे का मत है कि यह लेख गोविंद चंद्र के समय उस अवसर पर लिखा गया था जब वह चोल राज्य गया था। चालुक्यों से मित्रता। प्रबंध चिंतामणि से विदित होता है कि चालुक्य वंश के राजा सिद्धराज राज ने काशी नरेश जयचंद्र की राजसभा में अपना दूत भेजा था, परंतु जयसिंह सिद्धराज का समकालीन तो गोविंद चंद्र था। अतः अनुमान किया जा सकता है कि चालुक्य नरेश का दूत गोविंद चंद्र की राजसभा में आया होगा। कश्मीर नरेश से मित्रता। राज तरंगिनी से विदित होता है कि कश्मीर नरेश की जयसिंह की कानिकुब्ज नरेश के साथ मित्रता थी। साम्राज्य विस्तार। गोविंद चंद्र ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। महेत अभिलेख से प्रकट होता है कि उत्तर में इसका साम्राज्य उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले तक विस्तृत था। पूर्व में इसके अभिलेख लार, गगहा और पाली में प्राप्त हुए हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, पूर्व में कुछ समय तक बिहार का कुछ भाग भी गोविंद चंद्र के अधीन रहा था। पश्चिम में उसका साम्राज्य दिल्ली तक विस्तृत था। यहाँ का तोम तोमर वंश उसकी अधीनता में शासन करता था। दक्षिण पश्चिम में दशाण उसके साम्राज्य के अंतर्गत था। दक्षिण में उसका साम्राज्य यमुना नदी के दक्षिण तक विस्तृत था। इस विशाल साम्राज्य की स्थापना के कारण उसका विरुद्ध समस्त राजचक्र संसेवित चरण न्यायोचित था। सामंत उनके अधीन राजवंशों में तीन वंश विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पहला दिल्ली का तोमर वंश, दूसरा बदायूं का राष्ट्रकूट वंश और कानिकुब्ज का गाधीपुराधिपति गोपाल वंश। विजयचंद्र गोविंद चंद्र के पश्चात उसका पुत्र विजयचंद्र राजा बना। मुसलमानों की पराजय। अपने पिता की भांति विजयचंद्र को भी मुसलमानों से युद्ध करना पड़ा। ये निरंतर पंजाब से आगे पूर्व में अपने राज्य विस्तार की चेष्टा कर रहे थे। विजयचंद्र ने इनकी चेष्टा को विफल कर दिया। एक अभिलेख में कहा गया है कि उसने संसार का दनन करने वाले ममीर की स्त्रियों के नेत्रों से निकाली हुई अश्रुधारा से मुलोक के ताप को भी धो दिया। वह अमीर लाहौर का मुस्लिम शासक खसरो शाह अथवा खुसरो मलिक रहा होगा। सेनवंश से युद्ध। एक अभिलेख से प्रकट होता है कि सेनवंश के राजा लक्ष्मण सेन ने काशी के राजा को परास्त किया था। उसकी पुष्टि एक अन्य लेख से भी होती है जिसमें कहा गया है कि लक्ष्मण सेन ने प्रयाग और वाराणसी में अपने विजय स्तंभ स्थापित किए थे। विजयचंद्र लक्ष्मण सेन का समकालीन था, अतः उसी को काशीराज समझना चाहिए। परंतु लक्ष्मण सेन की विजय अस्थायी सिद्ध हुई क्योंकि विजयचंद्र ने अपने पूर्वी प्रदेशों पर पुनः अधिकार कर लिया। कमौली अभिलेख युवराज जयचंद्र का है। इससे सिद्ध होता है कि काशी प्रदेश गढ़वाल साम्राज्य में था। चामान वंश से युद्ध। चामान वंश का राजा विग्रहराज चतुर्थ विजयचंद्र का समकालीन था। 1164 ईस्वी के दिल्ली शिवाबीक स्तंभ लेख का कथन है कि विग्रहराज ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। इस कथन की पुष्टि दिल्ली संग्रहालय अभिलेख और पालम बाउली अभिलेख से होती है। इनके अनुसार हरियाणा प्रदेश में स्थित दिल्ली का नगरी पर पहले तोमरों ने राज्य किया और फिर चामानों ने। इससे स्पष्ट हो जाता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को विजयचंद्र के शासन करने वाले तोमर वंश से छीना था। दक्षिणी पूर्वी प्रदेश की विजय। ताराचंडी अभिलेख से विदित होता है कि विजयचंद्र ने दक्षिणी पूर्वी प्रदेश को जीतकर अपना साम्राज्य सोन नदी तक विस्तृत कर लिया था। इस प्रकार विजयचंद्र के समय गढ़वाल साम्राज्य बड़ा शक्तिशाली था। इसके पुत्र जयचंद्र के एक अभिलेख में उसकी तुलना त्रिविक्रम के साथ की गई है। वह पराक्रमी होने के साथ साथ विविध विद्या विचार वाचस्पति भी था। जयचंद्र विजयचंद्र के पश्चात उसका पुत्र जयचंद्र सिंहासनासीन हुआ। इसकी शक्ति का उल्लेख अनेक साक्ष्यों में हुआ है। पृथ्वीराज रासो से प्रकट होता है कि उसके पास एक विशाल सेना था। सूर्यप्रकाश के अनुसार इस सेना में 300,000 पैदल, 200,000 धनुर्धारी, 80,000 कवचधारी, 30,000 अश्वारोही और बहुसंख्यक गजारोही थे। कामिल उत्तवारीख उसके हाथियों की संख्या 700 बताता है जबकि फरिश्ता के अनुसार वह 300 थी। ताज उल्मा असीर का कथन है कि उसकी सेना सैनिकों की संख्या बालिका कणों के समान असंख्य थी। यद्यपि इन कथनों को अक्षरशः सत्य नहीं माना जा सकता तो भी यह निश्चित है कि जयचंद्र के पास एक अत्यंत शक्तिशाली सेना थी। फरिश्ता के अनुसार वह भारतवर्ष का सबसे शक्तिशाली राजा था। चंदेल वंश। जयजोक मुक्ति के चंदेल वंश का राजा परमार्दी जयचंद्र समकालीन था। पृथ्वीराज रासो का कथन है कि जयचंद्र और परमार्दी की मित्रता थी। जिस समय चामान नरेश पृथ्वीराज तृतीय ने परमार्दी पर आक्रमण किया तो जयचंद्र ने परमार्दी की सहायता की। चामान वंश। इस समय दिल्ली में चामान वंश का राज्य था। उसका शासक पृथ्वीराज तृतीय अपने समय का एक प्रतापी राजा था। ताजुल मां असीर का कथन है कि पृथ्वीराज दिग्विजय करना चाहता था, अतः कन्नौज के परम शक्तिशाली जयचंद्र से उसकी शत्रुता अवश्य संभावी थी। संयोगिता। पृथ्वीराज रासो से प्रकट होता है कि कन्नौज नरेश सैजन ने दिग्विजय करने के पश्चात राजसु यज्ञ किया था। इसी समय उसने अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर भी किया। इसमें उसने अनेक राजाओं को आमंत्रित किया परंतु शत्रुता के कारण पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित नहीं किया। पृथ्वीराज के स्वयंवर भूमि से संयोगिता का अपहरण किया। पृथ्वीराज रासो का कथन है कि स्वयं संयोगिता भी पृथ्वीराज का ही वरण करना चाहती थी। इस घटना ने जयचंद्र और पृथ्वीराज के बीच अत्यधिक शत्रुता उत्पन्न कर दी। अनेक विद्वान संयोगिता हरण को ऐतिहासिक नहीं मानते, वे अपने पक्ष में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत करते हैं। पहला, संयोगिता वृत्त पृथ्वीराज प्रबंध, प्रबंध चिंतामणि और प्रबंध कोश में नहीं मिलता। दूसरा, रंभामंजरी नाटक जयचंद्र के शासनकाल की अन्य घटनाओं का वर्णन करता है, परंतु यह संयोगिता वृत्त का उल्लेख नहीं करता। तीसरा, हम्मीर महाकाव्य हम्मीर चौहान और उनके पूर्वजों का वर्णन करता है, परंतु वह संयोगिता हरण का वर्णन नहीं करता। चौथा, पृथ्वीराज और संयोगिता के संबंध में अनेक ऐसी बातें कही गई हैं जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। वास्तव में उनकी प्रणय गाथा काल्पनिक है, परंतु इन आपत्तियों का उत्तर दिया जा सकता है। उपयुक्त कोई भी ग्रंथ तत्कालीन सभी घटनाओं का उल्लेख नहीं करते, वे अनेक ऐतिहासिक घटनाओं के विषय में भी मौन है। उदाहरण के लिए, हम्मीर महाकाव्य में पृथ्वीराज नागार्जुन परमार्दी चंदेल और भीमदेव द्वितीय चालुक्य के साथ हर युद्ध के भी उल्लेख नहीं मिलते। इसमें पृथ्वीराज के बहुविवाहों का भी उल्लेख नहीं है। अतः किस घटना के संबंध में किसी ग्रंथ का मौन उस घटना की अनैतिहासिकता सिद्ध नहीं करता। रही रंभामंजरी की बात, तो वह पूर्ण रूपेण विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि उसमें अनेक अनैतिहासिकता बातें भी लिखी हैं। अन्य ग्रंथ चंदेल नरेश मदन वर्मन को जयचंद्र का समकालीन बताता है, जबकि मदन वर्मन की मृत्यु जयचंद्र के पूर्व 1165 ईस्वी में हो चुकी थी। इस ग्रंथ के अनुसार जयचंद्र के पिता का नाम मल्लदेव था, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। जयचंद्र का पिता विजयचंद्र था। संयोगिता स्वयंवर और उसके अपहरण का विवरण अस्वाभाविक नहीं है। पृथ्वीराज और जयचंद्र दोनों महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली राजा थे। दोनों ही दिग्विजय द्वारा संपूर्ण उत्तरी भारत को अपने अधीन करना चाहते थे, अतः दोनों में शत्रुता नितांत स्वाभाविक थी। इस परिस्थिति में यदि जयचंद ने संयोगिता के स्वयंवर में पृथ्वीराज को आमंत्रित न किया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। प्राचीन भारत में कभी कभी नरेश अपने शत्रु अथवा उसकी मूर्ति द्वार पर स्थापित करके उसे अपमानित करते थे। राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग ने उज्जैन में अपने हिरण गर्भ महादान के समय प्रतिहार नरेश को द्वारपाल बनाया था। प्राचीन ग्रंथों में राक्षस विवाह का उल्लेख है। इसके अंतर्गत विवाह के लिए बलपूर्वक कन्या का अपहरण किया जाता था। महाभारत में इस विवाह प्रणाली के अनेक उदाहरण मिलते हैं। अर्जुन ने सुभद्रा का अपहरण करके विवाह किया था। यह प्रणाली क्षत्रियों के लिए उपयुक्त बताई गई है, अतः इस प्रणाली को छात्र विवाह प्रणाली भी बताया गया है। ऐतिहासिक काल में भी यत्र-तत्र इस विवाह प्रणाली के उदाहरण मिलते हैं। राष्ट्रकूट नरेश इंद्र ने चालुक्य राजकन्या भवनागा का अपहरण करके उसके साथ विवाह किया था। संयोगिता के संबंध में तो यह भी कहा जा सकता है कि वह स्वयं पृथ्वीराज से विवाह करना चाहती थी। यही नहीं, संयोगिता के अपहरण का विवरण पृथ्वीराज रासों में ही नहीं वरन अन्य ग्रंथों में भी मिलता है। यद्यपि उन विवरणों का रूप कुछ भिन्न है, पृथ्वीराज विजय में पृथ्वीराज और अप्सरा तिलोत्तमा के विवाह का विवरण है। इस विवरण और पृथ्वीराज संयोगिता के विवरण में बड़ा साम्य है। सुरजन चरित में संयोगिता स्वयंवर का विवरण मिलता है। अंतर यह है कि इसमें नायिका का नाम संयोगिता न होकर कांतिभति है। अबुल फजल ने अपनी आईन अकबरी में संयोगिता स्वयंवर का वैसा ही विवरण दिया है जैसा पृथ्वीराज रासों में मिलता है। इन आधारों को संयोगिता वृत्त को अनैतिहासिक नहीं माना जा सकता। मोहम्मद गौरी, इस समय मोहम्मद गौरी भारत विजय की योजना बना रहा था। उसने 1178 में चालुक्य राज्य की राजधानी अनहिलपट्टन पर आक्रमण किया, परंतु भीमदेव चालुक्य ने उसे पराजित कर दिया। इस पराजय के पश्चात मोहम्मद गौरी ने फिर से तैयारी की। 1181 में उसने सियालकोट में एक दुर्ग बनवाया। 1186 में उसने लाहौर के गजनबी शासक खुसरो मलिक को बंदी बना लिया। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज लाहौर पर अधिकार करने के पश्चात मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज के साम्राज्य पर आक्रमण करना प्रारंभ किया। भारतीय राज्यों का कथन है कि अपनी पराजय के पूर्व पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी को 7 बार पराजित कर चुका था। इन कथनों से यही निष्कर्ष निकलता है कि मुसलमान सेना ने पृथ्वीराज की सीमा पर अनेक छोटे मोटे आक्रमण किए थे, परंतु पृथ्वीराज की सेना ने उन्हें विफल कर दिया था। 1190 से 1191 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज के साम्राज्य में स्थित दबर हिंद पर अधिकार कर लिया। जैसे ही पृथ्वीराज को यह सूचना मिली, वैसे ही वह मोहम्मद गौरी का सामना करने के लिए आ पहुंचा। 1191 में करनाल जिले में स्थित तराइन के मैदान में दोनों सेनाओं का युद्ध हुआ। पृथ्वीराज के आक्रमण के सम्मुख मुस्लिम सेना अस्त व्यस्त हो गई, परंतु मोहम्मद गौरी फिर भी युद्ध करता रहा। उसने अपने भाले से दिल्ली के राजा गोविंद राज पर आक्रमण किया और उसके दो दांत तोड़ गिराए। गोविंद राज ने भी मोहम्मद गौरी पर अपने भाले से प्रत्याक्रमण किया और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। मोहम्मद गौरी अपने घोड़े से गिरने ही वाला था, उसके खिलजी सैनिक ने उसके घोड़े पर कूदकर उसे सहारा दिया और किसी प्रकार उसे युद्ध भूमि से भगा ले गया। इस प्रकार तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज की विजय हुई, परंतु उसने पराजित मुस्लिम सेना का पीछा न करके बड़ी भारी भूल की। मुस्लिम सेना बच निकली और वह फिर सुरक्षित स्थान पर जा मिली। तराइन के प्रथम युद्ध के पश्चात ही पृथ्वीराज ने संयोगिता का अपहरण किया और इस प्रकार अत्यंत संकटमय काल में कन्नौज के शक्तिशाली राजा जयचंद्र को अपना मित्र बनाने के बजाय अपना घोर शत्रु बना लिया। इस विजय के पश्चात वह निश्चिंत सा हो गया और अपनी नवविवाहिता पत्नी के आमोद प्रमोद में अपने दिन बिताने लगा। उधर मोहम्मद गौरी अपनी पराजय के पश्चात ही पुनः युद्ध की तैयारी करना प्रारंभ कर दिया। 1192 में उसने पृथ्वीराज पर पुनः आक्रमण कर दिया। पृथ्वीराज भी अपनी सेना के साथ तराइन के मैदान में आ डटा। मोहम्मद गौरी ने छल पूर्वक पृथ्वीराज से संधि की वार्ता चलाई और उससे कहा कि वह वापस जाने के लिए अपने भाई की अनुमति प्राप्त करने के लिए पत्र लिख रहा है। पृथ्वीराज इस धोखे में आ गया और असावधान हो गया। ऐसी परिस्थिति में एक दिन उषा काल में मोहम्मद गौरी ने चहमान सेना पर धावा बोल दिया। पृथ्वीराज अभी सो रहा था। राजपूत सैनिकों ने अभी नित्य कर्म भी न किया था, फिर भी उन सब ने अस्त्र शस्त्र उठा लिए। वे बड़ी वीरता से लड़े। मुसलमानों ने फिर धोखे से काम लिया, वे जानबूझकर पीछे हटने लगे। राजपूतों ने समझा कि वे भाग रहे हैं, अतः उन्होंने बिना किसी निश्चित योजना संगठन के उनका पीछा किया। तभी मुस्लिम सेना ने पीछे मुड़कर राजपूतों पर भीषण आक्रमण कर दिया। राजपूत इसे न रोक सके और वे पराजित हुए। दिल्ली का राजा गोविंद राज युद्ध करते हुए मारा गया। पृथ्वीराज ने भागने की चेष्टा की, परंतु वह सरस्वती नदी के किनारे सिरसा के पास पकड़ लिया गया और कालांतर में मोहम्मद गौरी ने उसकी हत्या करवा दी। इस प्रकार तराइन का द्वितीय युद्ध चहमान राज और भारतवर्ष के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। मोहम्मद गौरी और जयचंद्र पृथ्वीराज रासो का कथन है कि जयचंद्र ने पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया था, परंतु यह कथन सत्य प्रतीत नहीं होता। संभवतः जयचंद्र के प्रति शत्रुता होने के कारण ही पृथ्वीराज के राजकवि चंद्रबरदाई ने इस प्रकार की मनगढ़ंत बात लिखी थी। पुरातन प्रबंध संग्रह का कथन है कि पृथ्वीराज के एक मंत्री ने ही अपने स्वामी के विरुद्ध मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया था। जो भी हो, इतना निश्चित है कि मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय जब पृथ्वीराज ने भारतीय नरेशों से सैनिक सहायता मांगी तो जयचंद्र ने उसे कोई सहायता न दी, परंतु यह संकीर्णता प्राय तत्कालीन सभी भारतीय नरेशों में थी। जिस समय मोहम्मद गौरी ने चालुक्य नरेश भीम पर आक्रमण किया तो पृथ्वीराज ने भीम को कोई सहायता नहीं दी। भारतीय ग्रंथों का कथन है कि पृथ्वीराज की पराजय पर जयचंद्र के राज्य में घर घर खुशियां मनाई गयी। वह मोहम्मद गौरी के आक्रमण के स्वरूप को न समझ सका। उसका यह विचार था कि पृथ्वीराज को पराजित करने के पश्चात मोहम्मद गौरी वापस चला जाएगा और तब उसे संपूर्ण उत्तरी भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने का सुअवसर प्राप्त हो जाएगा। तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। उसने हाशी सिरसा समाना और कोहराम के दुर्गों पर अधिकार किया। तदुपरांत अजमेर को भी उसने जीत लिया। चंदवर का युद्ध। अब मोहम्मद गौरी ने कन्नौज पर आक्रमण करने की योजना बनाई। पुरुष परीक्षा, रंभा मंजरी, रासोसार आदि ग्रंथों का कथन है कि जयचंद ने मोहम्मद गौरी को अनेक बार पराजित किया था, परंतु इस कथन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। मुस्लिम इतिहासकार एक ही युद्ध का वर्णन करते हैं और उसमें जयचंद मारा गया था। पुरातन प्रबंध संग्रह का कथन है कि जयचंद की सुभाग देवी के एक पुत्र था। वह उसे जयचंद का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी, परंतु स्वयं जयचंद महारानी कर्पूर देवी के पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। अतः सुभाग देवी ने अपने दूत भेजकर मोहम्मद गौरी को कन्नौज पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। हसन निजामी के कथनानुसार मोहम्मद गौरी ने 50,000 सैनिकों के साथ कन्नौज पर आक्रमण किया। इस सेना ने कन्नौज की सीमा पर जयचंद की एक सैनिक टुकड़ी को परास्त किया। इस आक्रमण की सूचना पाकर जयचंद स्वयं अपनी सेना लेकर मोहम्मद गौरी से युद्ध करने के लिए आया। दोनों सेनाओं में 1194 ईस्वी में चंदवर के मैदान में युद्ध हुआ। हिंदू बड़ी वीरता से लड़े, परंतु मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ने धनुष से छूटा हुआ एक बाण जयचंद की आंख में घुस गया। इससे घायल होकर वह अपनी हाथी से गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। जयचंद के मरते ही हिंदू सेना भाग खड़ी हुई। मुसलमानों ने भयंकर मार काट की। बहुत बड़ी संख्या में में हिंदू मारे गए। जयचंद्र का पुत्र भी युद्ध करते हुए मारा गया। चंदवर की विजय के पश्चात मुस्लिम सेना ने असनी पर आक्रमण किया और वहां स्थित राजकोष पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात मोहम्मद गौरी ने वाराणसी पर अधिकार किया और वहां लगभग 1000 मंदिरों को तोड़कर उसके स्थान पर मस्जिदों का निर्माण कराया। हरिश्चंद्र कमौली दानपत्र से प्रकट होता है कि जयचंद्र के एक हरिश्चंद्र नामक पुत्र था। उसका जन्म 1232 विक्रम संवत अर्थात 1175 ईस्वी में हुआ था। उसके जात कर्म संस्कार के अवसर पर जयचंद्र ने ग्राम दान किया था। इस प्रकार अपने पिता की मृत्यु के समय हरिश्चंद्र 19 वर्ष का था। जौनपुर जिले में मछली शहर तहसील के कोटवा ग्राम में गाढ़वाल नरेश परम भट्टार महाराज अधिराज परमेश्वर हरिश्चंद्र का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसके अनुसार उसने एक ब्राह्मण को ग्राम दान दिया था। इस अभिलेख की तिथि 1253 विक्रम संवत है। मिर्जापुर जिले में बेलखरा ग्राम में एक स्तंभ लेख मिला है। इसमें परम भट्टारकर कृत्याधिकार राजा बल्ली अश्वपति गजपति नरपति राजत्रयाधिपति विद्या विचार्य वाचस्पति श्रीमत कान्यकुब्ज विजय राज्य लिखा हुआ है। इस लेख की तिथि भी 1253 विक्रम संवत है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह कान्यकुब्ज नरेश हरिश्चंद्र ही था। इन अभिलेखों से प्रकट होता है कि चंदवर की पराजय के पश्चात भी गाढ़वाल वंश के हाथ में जौनपुर वाराणसी आदि के प्रदेश बचे रहे। डॉक्टर रे का मत है कि चंदवर के युद्ध के पश्चात मुसलमान केवल कन्नौज राज्य के प्रमुख नगरों पर ही अधिकार करने में समर्थ हुए थे। भीतर के नगर और ग्राम उसके पश्चात भी गाढ़वालों के अधीन रहे। इस बात की पुष्टि तबकात ए नासिरी से भी होती है। इसका कथन है कि वाराणसी को इल्तुमिश ने जीता था, मोहम्मद गौरी ने नहीं। परंतु इसके विरुद्ध डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी का मत है कि यह नितांत अस्वाभाविक प्रतीत होता है कि मुसलमानों के विरुद्ध अल्पायु हरिश्चंद्र वाराणसी पर अपना अधिकार बनाए रहा हो। अधिक स्वाभाविक यह प्रतीत होता है कि मोहम्मद गौरी ने वाराणसी तक का प्रदेश जीत लिया था और हरिश्चंद्र को अपनी प्रभुसत्ता स्वीकार कराने के पश्चात उसे एक सीमित प्रदेश पर शासन करने की अनुमति दे दी थी। संभवतः हरिश्चंद्र के पश्चात गाढ़वाल राज्य का पतन हो गया और उस पर मुसलमानों ने अधिकार कर लिया।